आज है 29 नवंबर दिन शुक्रवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6 साल में सबसे बड़ी गिरावट।
जब अर्थव्यवस्था का बंटा धार हो गया है और जब जीडीपी भाजपा के लिए गॉड से डिवाइसिव पॉलिटिक्स बन गया है तो क्या आज भी मोदी जी कहेंगे सब चंगा सी?
बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा।
महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है
बार बार
हत्याकारी को देशभक्त कहती है।
और विवेचना में चर्चा रंगा बिल्ला के जीवन के आखिरी क्षणों की।
जैसे आप लीवर खींचते हैं तो नीचे एक 12 फीट का वेल होता है, वो फांसी के तख्त उसके बीच में गिर जाते हैं, तो जो आदमी उसके ऊपर खड़ा होता है वो एकदम झटके से नीचे।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 4.5% पर आ गई है। पिछले 6 साल में ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे धीमी विकास दर है। तेलंगाना के हैदराबाद में 27 साल की एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। हैदराबाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद एक बार फिर भारत में महिलाओं के साथ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर बहस छिड़ गई है। लोगों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर हजारों लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। भारत श्रीलंका को $400 मिलियन की मदद देगा। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद गोटाभाया राजपक्षे सबसे पहले भारत आए हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
एक स्थिर सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है बल्कि संपूर्ण इंडियन ओशन रीजन के भी हित में है।
ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। इराक के प्रधानमंत्री अब्देल अब्दुल महदी ने कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे। दरअसल एक दिन पहले ही इराक के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 40 से ज्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इराकी शिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली अल सिस्तानी ने भी इस घटना की निंदा की थी। हांगकांग की पुलिस ने जिस एक यूनिवर्सिटी के आसपास घेराबंदी कर रखी थी उस घेराबंदी को हटा लिया गया है। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान उन्हें कैंपस से करीब 4000 पेट्रोल बम मिले थे। यहां पुलिस और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई थी। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कैंपस में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कैंपस में तोड़ फोड़ की गई। जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी में घुसकर उस जगह को हथियारों की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया हम उनकी निंदा करते हैं। पुलिस इस मामले की जांच में लगी है और अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ये थे पुलिस प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री शार्ल्स मिशेल यूरोपीय संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने डोनाल्ड टस्क की जगह ली है। पद संभालने के बाद शार्ल्स मिशेल ने कहा कि वो समस्याओं के समाधान के लिए कॉमन सेंस की अप्रोच अपनाएंगे। सूडान में सत्ता से बेदखल किए गए पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर की नेशनल कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी गई है और उनकी संपत्ति को सीज कर लिया गया है। बशीर के विरोधी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश के निर्माण के लिए ये एक बड़ा कदम है, लेकिन पार्टी ने फैसले की निंदा की है और मौजूदा सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी बताया है। दक्षिण कोरिया में 2 के पॉप स्टार को गैंगरेप समेत यौन अपराधों का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने एक को 5 और एक को 6 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि जंग जून यंग और चोई चोंग हुन ने बेहोशी की हालत में कई महिलाओं का बलात्कार किया था। रूस में एक महिला को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये महिला रूस से गोपनीय सैन्य जानकारी जुटाकर यूक्रेन की सरकार को दे रही थी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन भर संदीप सोनी के साथ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े आज जारी कर दिए हैं। जीडीपी में 6 साल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई से सितंबर की बीच की अवधि में भारत की जीडीपी गिरते गिरते 4.5% पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने यह खबर आते ही मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
जब अर्थव्यवस्था का बंटा धार हो गया है तो क्या आज भी मोदी जी कहेंगे सब चंगा सी, सच बात है सब मंदा सी? ये इस देश की सच्चाई है। 7.5% से 4.5% जीडीपी की ग्रोथ आ जाना दर्शाता है कि देश में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं, किसान के लिए फसल की कीमत नहीं, व्यापार नहीं, निर्यात नहीं, किसी प्रकार का नया उद्योग और धंधा नहीं। खपत जो है वो आज पिछले 30 साल में सबसे ओंधे मुंह पर है।
ये थे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला। जीडीपी का 4.5% पर आने का क्या मतलब है और इस गिरावट की क्या वजह है, जानने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी से बात की।
सरल जबान में इसका मतलब यही हुआ कि हमारे देश की कुल जो आर्थिक गतिविधि है, जो कुछ लेन देन इस देश में होता है, सब मिलाकर देश भर में कितना खर्च हुआ, ये होती है जीडीपी, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें बढ़ोतरी जरूरी है, पूरे देश की तरक्की की रफ्तार को जीडीपी ग्रोथ रेट बोला जाता है। ये 8% तक लगभग पहुंची हुई थी पिछले कुछ सालों में, लेकिन लगभग 1.5 साल से लगातार गिर रही है और गिरते गिरते ये 4.5% हो गई है, जो अर्थशास्त्रियों के अनुमान से भी नीचे है।
4.5% पर जीडीपी का आ जाना, इसके पीछे सरकार की नीतियों का भी योगदान माना जाएगा?
इसके पीछे सरकार की नीतियों का योगदान इसलिए माना जाएगा क्योंकि जब देश में तरक्की होती है तो उसका श्रेय सरकार को दिया जाता है, और अगर तरक्की नहीं हो रही है, किसी वजह से रुक रही है, लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो गई हैं जो दिखा रहा है इसको, क्योंकि आदमी खर्च करना बंद कर रहा है। जो अलग से आंकड़े आ रहे हैं उनको देखिए तो लोगों ने खर्च रोक रखा है, जो इस सारी समस्या की जड़ दिख रहा है। तो वो खर्च कब रोकता है आदमी, जब उसके मन में डर होता है कि भविष्य अच्छा नहीं है। सरकार की नीतियां तो पक्के तौर पर उसमें एक बड़ा कारण है।
अभी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को हम सुन रहे थे। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप में कितना दम है कि सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, खासतौर पर जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय को चला रही हैं और जिस तरह से मोदी सरकार नीतियों को शेप देने का काम कर रही है।
ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए कहना बिल्कुल ठीक है उनकी तरफ से, लेकिन मुझे जो लगता है और जो मैं जानकारों से जितने भी बात कर रहा हूँ उनमें मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी तरह से चला रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई चला रहा है। बजट में कुछ ऐसे ऐलान हुए जिनकी किसी को अंदेशा नहीं था, आशंका नहीं थी, उसके बाद वो एक के बाद एक वो फैसले पलटे गए, फिर ऐसा लग रहा है कि अब जो जाकर जैसी सलाह दे देता है उसको बहुत तेजी से माना जा रहा है, और ये भी आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। आपको एक भरोसेमंद लोगों का पैनल बनाना चाहिए और उसकी सलाह माननी।
आलोक जी, आप आर्थिक मामलों पर पैनी नजर रखते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार ने 2-4 जो बड़ी गलतियां की हैं वो क्या हैं, जिसकी वजह से जीडीपी के जो नंबर हैं नतीजे की शक्ल में सामने आए हैं?
नोटबंदी का असर ऐसा होगा, ये शायद इसका हिसाब लगाने में सरकार चूकी है, और वो बहुत देर में आ रहा है, इसलिए कोई लोग सवाल भी उठा सकते हैं कि ये इस वक्त क्यों कहा जा रहा है। लेकिन आपको याद हो तो उस वक्त ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इससे 1-1.5% की कटौती जीडीपी की ग्रोथ रेट में होगी, हो सकती है, तब उनका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब वो लग रहा है कि एक बड़ी चीज वो थी, दूसरा जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन जीएसटी की वजह से उसके इम्प्लीमेंट होने के तौर तरीकों में जो हिचकिचाहट रही शुरुआती दौर में, उससे लगता है कि सिस्टम में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं। और तीसरी चीज है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं, हमें नहीं मालूम है ठीक से, लेकिन ये डर बड़े पैमाने पे फैला हुआ है कि कुछ भी करने पर पकड़े जाएंगे, और ये डर उन लोगों में जिन्हें अर्थव्यवस्था में कुछ काम करना था, वो बैंक के बड़े अधिकारी हों, वो बड़े उद्योगपति हों, इन सबके बीच एक तरह की घबराहट है, और आम आदमी के अंदर जो मध्यवर्गीय नौकरी पेशा लोग हैं उनके अंदर अपनी नौकरी अपने रोजगार को लेकर चिंता है, उसका कोई इलाज दिख नहीं रहा है। अगर रोजगार वाले मोर्चे को ठीक से टैकल किया जाएगा तभी मुझे लगता है इसका कोई सीधा हल निकलेगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी। इससे पहले आज लोकसभा में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और नाथुराम गोडसे से संबंधित कथित बयान के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। प्रज्ञा ठाकुर ने कल से आज बात आगे बढ़ाई।
संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हंगामा कम करने की कोशिश की।
इस विषय पर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। अधीर रंजन जी पूरी बात सुन लो। एक मिनट आप बात सुनो ना, ऐसे मत करिए। तो पूरी बात सुने आप, स्पीकर की बात पूरी सुने सुरेश जी, आप पूरी बात सुने। स्पीकर की महात्मा गांधी जी के हत्या के मामले के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी सदन में या सदन से बाहर कहीं भी महिमा मंडित करने का सदन इसकी इजाजत नहीं देता।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कम करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पीछे नहीं हटे।
एक पार्टी का कोई व्यक्ति का मामला नहीं है,
आप इनको बोलने दें, आप बोले।
सदन की अंदर ये घटना घटी है और इसके चलते पिछले 2-3 दिनों तक ये चर्चा सारे मीडिया पे, टीवी पे, पेपर पे, सारे मीडिया पे छाए हुए हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है,
बार बार इस
हत्याकारी को देशभक्त कहते हैं और इसलिए हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रही है।
इस तरह लोकसभा में आज हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और बात बनी दोपहर बाद, तब जब प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में माफी मांगी।
मैंने दुश्मनों के द्वारा दिए गए बहुत सारे अत्याचार सहन किए।
माननीय सदस्य आप,
महोदय मैं अपनी बात तो कह सकती हूँ, पुरानी बात भी हमारी अधूरी रह गई। महोदय मैं जो कहना चाहती हूँ आप सुनिए।
आपका नो नहीं, मैं दे रहा हूँ व्यवस्था, आप नहीं, आप मत बोलो, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।
मैं देश के लिए जो करती हूँ बस मैं उतना कहना चाहती हूँ कि मैंने 27/11/2019 को एसपीजी बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूँ।
ठीक है, चलिए।
प्रज्ञा ठाकुर के माफी मांगने के बाद लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रही। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की भी मांग की।
बीबीसी इंडिया बोल।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्यों फेल हुई, क्या इससे बीजेपी नेतृत्व कुछ सबक लेगा, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 30 नवंबर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
हाल ही में सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी की एक किताब प्रकाशित हुई है, ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर, जिसमें फांसी पाए अपराधियों के अंतिम क्षणों का वर्णन किया गया है। साल 1982 में जब खूंखार अपराधियों रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई तो सुनील गुप्ता वहां मौजूद थे। कौन थे रंगा बिल्ला, उन्होंने कौन सा अपराध किया था और रंगा बिल्ला को फांसी देते समय क्या क्या हुआ, बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
1982 में जनवरी के आखिरी दिन तिहाड़ जेल में दो कुख्यात हत्यारों रंगा और बिल्ला को फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जब वो सुबह 5 बजे उठे तो दोनों को चाय का एक एक प्याला दिया गया। उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। दोनों ने इससे इनकार किया। दोनों के हाथ में हथकड़ियां पहनाई गईं और ब्लैक वारंट में फांसी के लिए दिए गए समय से 10 मिनट पहले उनसे उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया जहां फांसी का फंदा लगा हुआ था। मैंने ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर के लेखक सुनील गुप्ता से पूछा कि तिहाड़ जेल में मौत की सजा का इंतजार कर रहे रंगा और बिल्ला का व्यवहार कैसा था।
जो रंगा था जॉली किस्म का इंसान होता है वैसे था, 5'9" 5'10" इसका कद था और वो हमेशा खुश रहता था। उसको ये कोई वो नहीं होती थी कि क्या होगा, फांसी होनी है। एंड ही यूज्ड टू से, उन दिनों में एक बॉलीवुड स्टारर थी, वो कहता उसमें मैंने रंगा खुश करके उसमें एक डायलॉग था, कहता वो मैंने बोला था। जो बिल्ला था वो पेशे से ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था, हमेशा सीरियस रहता था। वो हमेशा रोता रहता था कि रंगा ने मुझे फंसवा दिया, रंगा कहता था मुझे बिल्ला ने फंसवा दिया। तो उनकी हमेशा ये आपस में तकरार होता रहता था। जेल में जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस हुई है तो आप उसको एक ऑर्डिनरी कन्विक्ट जो है आप समझेंगे जब तक कि उसकी मर्सी पिटीशन जो है रिजेक्ट नहीं हो जाती। जिस टाइम पे मैं गया उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो इनका जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था, तो मैं देखता था जेल में खेलते रहते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे।
आखिर इन दोनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पूरा देश उन्हें फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता था? ब्लैक वॉरेंट पुस्तक की सहलेखिका और हिंदुस्तान टाइम्स की राजनीतिक संपादक सुनेत्रा चौधरी बताती हैं।
जैसे हम लोगों की जनरेशन में एज अ रिपोर्टर हमारे लिए सबसे बड़ा क्राइम जैसे निर्भया था, तो उसके पहले जो जनरेशन वाले हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा क्राइम तो वो बिल्ला और रंगा वाला केस है। आजकल के लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि दिल्ली में कोई इतने इनोसेंट होंगे या फिर समय इतना इनोसेंट होगा कि वो अपने मम्मी पापा को बता के जाते हैं कि हम लिफ्ट लेके पहुंच जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो उनका एक शो था और जाते वक्त उन्होंने किसी से लिफ्ट लिया क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है, और लिफ्ट लेते वक्त हुआ ये कि दो गुंडे जो थे जो कि बॉम्बे से आ रहे थे, उनका प्लान ही यही था कि किसी गाड़ी को चोरी करेंगे, कुछ रॉबरी करेंगे, मतलब छोटे स्मॉल टाइम क्रिमिनल टाइप के थे बिल्ला और रंगा। और उन्होंने कैसे इन दोनों को किडनैप किया ये सोच के कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे होंगे, उनको रैंसम मिलेगा, लेकिन कैसे वो उलझता गया और फिर किसी तरीके से वो रेप का मामला हो गया और फिर मर्डर हुआ।
दो किशोर बच्चों की हत्या और लड़की के साथ बलात्कार ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे में 30 सितंबर 1978 के अंक में दिलीप बॉप ने लिखा।
गीता और संजय चोपड़ा के पिता ने बताया कि वो धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर्स से शनिवार शाम 6:15 बजे निकले। गीता जीसस एंड मेरी कॉलेज के कॉमर्स में सेकेंड ईयर की छात्रा थी और उन्हें उस शाम संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युवाणी के इन द ग्रूव कार्यक्रम में भाग लेना था। 5 फीट 10 इंच लंबा उनका भाई संजय 10वीं कक्षा का छात्र था। बाहर बादल छाए हुए थे और सुबह से रह रहकर बारिश हो रही थी। तय ये हुआ था कि कार्यक्रम के बाद कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। जब वो 9 बजे वहां पहुंचे तो वहां बच्चों का कोई पता नहीं था। जब उन्होंने अंदर पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि गीता और संजय चोपड़ा वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं।
इन बच्चों को ढूंढने के लिए दिल्ली और कई राज्यों की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने पुलिस को बताया।
करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फिएट मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ कार के नजदीक ले गया। आगे की सीट पर दो लोग बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर एक लड़का और लड़की थे। लाल बत्ती के पास आकर जब कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? लड़के ने शीशे से अपना मुंह सटाकर अपनी टी शर्ट की तरफ इशारा किया जो खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से ही गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की पर लगातार वार कर रहा था। मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कार ने रफ्तार पकड़ ली और लाल बत्ती जंप करके आगे निकल गई। लड़के की शक्ल विदेशी जैसी थी और मस्टर्ड रंग की कार का नंबर था HRK 8930।
रंगा और बिल्ला इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ रिज इलाके में ले गए, जहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और फिर गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने एक बालिया बयान में कहा,
मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चलने लगा। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाई और झाड़ी में फेंक दी।
घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। बोट क्लब पर जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने प्रदर्शन किया। जब उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बात करने वहां पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी के सिर में लगा और उनका कुर्ता खून से भीग गया।
मुझे अभी भी याद है कि जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे देश के, मुरारजी देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, वो इनके घर गए थे। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी क्राइम के विक्टिम के घर जा रहे हो, वो इनके घर गए थे।
वारदात के बाद बिल्ला और रंगा दिल्ली से भागकर पहले मुंबई गए और फिर आगरा। ये उनका दुर्भाग्य था कि आगरा से दिल्ली आते हुए वो कालका मेल में गलती से सैनिकों के डिब्बे में चढ़ गए और उन्होंने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
उनको पैनिक हो गया ये पूरे इंसिडेंट के बाद, वो यहाँ से वो भागने लग गए। और फिर एक ट्रेन में कैसे, एक बोगी था जहाँ पे बहुत सारे डिफेंस पर्सनल थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे कैसे घुसा है, उनसे उनका आई कार्ड मांगा। उनको इसलिए शक हुआ क्योंकि रंगा ने बिल्ला से कहा कि वो भरा हुआ आई कार्ड देना तो उससे उनको पता चल गया कि ये बहुत ही मामला खराब है। और फिर तभी उन्होंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उनको हैंड ओवर कर दिया।
बिल्ला और रंगा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उनकी दया की याचिका अस्वीकार कर दी। दोनों को फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया।
ये दो लोग जो हैं काफी लेजेंडरी हैं, आई थिंक कालू और फकीरा, बिल्कुल ही अनऑफिशियल लेकिन हमेशा एक रिचुअल बन गया है कि उनको एक ओल्ड मंक या किसी भी अल्कोहल का बॉटल देना है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी आदमी किसी की लाइफ, इवन दो वो हैंगमैन है, वो अपने राइट सेंसेस या फिर पूरा कॉन्शियस होके शायद नहीं कर पाएंगे। और जो अमाउंट है, अमाउंट भी बहुत ही कम है जेल मैनुअल से, 150 रुपये। फिर उसके बाद बहुत लोगों ने ये कहा कि अल्कोहल वहीं पे खोल के डालते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जो आत्मा है जिनको उन्होंने खत्म किया, उनको शांति मिले करके वहीं पे अल्कोहल देना।
इन दोनों को फांसी देने के लिए बिहार की बक्सर जेल से एक खास किस्म की रस्सी मंगवाई गई।
फांसी की जो रस्सी है ये बक्सर जेल में बनती है, तो ये हम वहां से देख के आते हैं। उनका एक बनाने का बड़ा यूनिक वो है कि जो उसकी तारें होती हैं जिससे वो रस्सी बनती है, उसको काफी देर तक वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। रस्सी बनाने के बाद उसके ऊपर वैक्स वगैरह लगाते हैं। इसमें जो जलाद जो आते थे, बेसिकली वो अपने आप को यमराज से कम नहीं समझते। जो फकीरा था, अगर मैं उनकी जो पर्सनैलिटी जो आपको डिस्क्राइब करूँ, फकीरा बिल्कुल काले रंग का था, बिल्कुल काला, धुर काला, और पंजाबी बोलता था। जो कालू था तो उसकी पेट आगे निकला हुआ जैसे हलवाइयों का निकला होता है, और यूं यूं बड़ी बड़ी उसने मूछें रखी हुई थी। तो जस्ट एक अपनी भी बताने के लिए कि हम जलाद हैं, शक्ल से भी जलाद लगे, यमराज लगे, इस तरीके की उनकी जो पर्सनैलिटी होती थी।
फांसी से एक दिन पहले दिल्ली के 5 पत्रकारों ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा प्रकट की। इनमें से एक थे उस समय नेशनल हेराल्ड में काम करने वाले प्रकाश पात्रा।
ये जो इनके बैरक्स था ये एकदम पीछे है तिहाड़ जेल के, और उसका 3 साइड जो है, जो बिल्ला के जो एनक्लोजर था जो बैरक, वो 3 साइड से क्लोज था और फ्रंट साइड ओपन, वो ग्रिल लगा हुआ था। मैंने सोचा था कि बहुत हट्टा कट्टा वो क्रिमिनल ये टाइप का होगा, लेकिन नॉर्मल आदमी जैसे लग रहा था, ज्यादा हेल्दी भी नहीं था वो, और वो कांप रहा था, सीवर कर रहा था। हमेशा कहता रहा कि रब जानता है कि बिल्ला निर्दोष है, बट उसका जो सीवरिंग और उसका फेस जो है वो बिट्रे कर रहा था उसको, कि लग रहा था कि वो तो क्रिमिनल है ही है, लेकिन वो डरा हुआ था। हम लोगों की करीब 20-25 मिनट की मुलाकात था वहाँ पे। सवाल उसको यही था कि तुमने जो किए हो उसके लिए अभी रिग्रेट कर रहे हो क्या, रिपेंट कर रहे हो क्या? तो उसने मना किया कि मैंने ये तो किया ही नहीं हूँ, इसमें मेरे को फंसाया गया है।
31 जनवरी 1982 को बिल्ला और रंगा की गर्दन में फांसी का फंदा पहनाया गया और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया।
5 बजे के करीब उनको कहा कि नहा लो, आपने नहाया तो रंगा तो नहाया था पर बिल्ला नहाया नहीं। हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते कि आपने नहाया। उसके बाद क्या होता है कि इनको ब्लैक कपड़े होते हैं वो पहना दिए जाते हैं। मतलब फांसी में जो चीज होती है हर एक चीज ब्लैक से शुरू होती है। कपड़े ब्लैक होते, सिर के ऊपर जो इनको वो डाला जाता है, थैला डाला जाता है इनके ऊपर, वो ब्लैक होता है। जो वारंट इशू होता है वो ब्लैक वारंट इशू होता है, तो सब चीज ब्लैक होती है। उसके बाद जो है इनको हाथ हैंडकप करके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, और फिर इनको चलते हुए जो है इनको जाना होता है फांसी के तख्ते पे, तो वहां जाके इनके पैरों को भी नीचे से बांध दिया जाता है, तो आदमी बिल्कुल बंद जाता है। फिर उसके बाद उनके गले पे जो है वो एक थैला सा होता है जो डाल दिया जाता है ताकि उनको जो बाहर क्या हो रहा है वो नजर ना आए। दूसरा क्या होता है, जब एक आदमी लटकता है तो उसकी जीभ वगैरह कईयों की आंखें बाहर निकल आती हैं, काफी एक भयानक सा वो एक उनका रूप हो जाता है ताकि वो जो वहां पे लोग खड़े हैं उनको भयानक रूप नजर ना आए, तो उसके सिर के ऊपर काले रंग का जो है एक थैला जो है वो डाल दिया जाता है। एक टाइम पे दो फांसी हम इकट्ठी दे सकते हैं। जैसे ही आप लीवर खींचते हैं तो नीचे एक 12 फीट का जो है वेल होता है, वो फांसी के तख्ता उसके बीच में गिर जाते हैं, तो जो आदमी उसके ऊपर खड़ा होता है वो एकदम झटके से नीचे, रस्सी होती है एकदम उसकी जकड़ लेती है उसके गले को, उसको कहते हैं कि जेल की भाषा में कि उनका गला लंबा हो जाता है। अगर आदमी का शरीर भारी है तो आपका गर्दन ऊपर रह जाती है और बॉडी नीचे गिर जाती है।
निर्धारित समय पर जेल के सुपरिंटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और जल्लादों ने लीवर खींच दिया। दो घंटे बाद जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो बिल्ला तो मृत पाया गया लेकिन रंगा की नाड़ी तब तक चल रही थी।
अगर वेट आपका नीचे का ज्यादा होता है तो आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगर आपका वेट हल्का होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो वेट हल्का है, और दूसरा अगर आपने सांस थोड़ी रोक ली तो उसमें आपकी सांस धीरे 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 निकलती है। हमारा मैनुअल ये कहता है कि दो घंटे बाद जेल का डॉक्टर जो है उसको देखेगा और वो देखेगा कि लाइफ एक्सटिंक्ट हुई है कि नहीं हुई, और अगर हो गई है तो वो उसमें सर्टिफिकेट दे देगा, और वो सर्टिफिकेट हम जो है जेल सुपरिंटेंडेंट जो जिस जज ने फांसी दी होती है उसको भेजते हैं। तो इस केस में जब रंगा को डॉक्टर ने देखा तो दो घंटे बाद भी उसमें अभी सांस चल रही थी। तो अब क्या होता है कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इसको हमने लटकाया है तो लटका नहीं, क्योंकि ऐसे इंस्टांस मैंने पहले सुने थे कि किसी को फांसी लगानी थी वो भाग गया, तभी वो हाथ और पैर जो है बांध देते हैं जब उसको ले जा रहे होते हैं। इसके केस में जो है ये मेरे सामने की बात है कि जो जेल स्टाफ था उनको एक ही होती है टेंशन होती है कि इसकी लाइफ जल्दी एक्सटिंक्ट हो, तो उसके लिए गड्ढे में गया, गड्ढे में जाकर उसने टांग को खींचा, बिल्ला की तो एक्सटिंक्ट एकदम हो गई थी, रंगा की जो है उसको टांग खींच के जो है उसका वो किया।
न ही बिल्ला और न ही रंगा के रिश्तेदारों ने उनके शवों को स्वीकार किया और जेल की तरफ से ही उनकी अंत्येष्टि की गई। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और स्टूडियो में आ चुकी हैं सूर्यांशी पांडे, बताइए खेल के मैदानों में आज क्या हलचल है?
खेल के मैदानों पे आज हलचल ही है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि डेविस कप में टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। रामकुमार रामनाथन और सुमित नागल ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए डेविस कप के मुकाबले में पहले दिन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की बढ़त दिलाई है। एकल मुकाबले पूरी तरह से एक तरफा रहा। रामकुमार ने पहले मैच में 17 साल के मोहम्मद शोएब को केवल 52 मिनट में 6-0 से शिकस्त दी। तो वहीं शोएब केवल दूसरे सेट के छठे गेम में थोड़ी चुनौती पेश कर पाए लेकिन सफल नहीं रहे, और सुमित ने इसके बाद डेविस कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। उन्होंने दूसरे एकल में हुफैजा मोहम्मद रहमान को 64 मिनट में 6-0, 6-2 से पराजित किया, और ये खास बात है कि उनका ये पहला डेविस कप था और उसमें भी जीत दर्ज की उन्होंने बाजी मारी। और अगर हम आगे बढ़ें तो इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के कंपनी सिटी फुटबॉल ग्रुप ने इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी मुंबई सिटी AFC की 65% हिस्सेदारी खरीदी है।
सूर्यांशी पांडे से खेल समाचारों के बाद चलते चलते मुख्य समाचार पुनः गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ रेट गिरकर 4.5% पर आ गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में 27 साल की एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत श्रीलंका को $400 मिलियन की मदद देगा। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की। इराक के प्रधानमंत्री अब्देल अब्दुल महदी ने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे। हांगकांग की पुलिस ने जिसे एक यूनिवर्सिटी के आसपास घेराबंदी कर रखी थी उस घेराबंदी को हटा लिया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।